दानियल अध्याय छे। दानियल अध्याय छे पद एक। दारा को ये अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखें। बाबुल पर विजय प्राप्त करने के बाद मादी फारसी राजा दारा ने, जो कुसरू का सह शासक था, उसने संपूर्ण राज्य पर 120 अधिपति ठहराए। दानियल अध्याय छे पद दो। और उनके ऊपर उसने तीन अध्यक्ष, जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें, और इस रीति राजा की कुछ हानि ना होने पाए। दानियल तुरंत ही उच्च पद पर पहुंच गया। वो इन तीनों अध्यक्षों के ऊपर नियुक्त किया गया था। दानियल अध्याय छे पद तीन से लेकर पांच तक। जब ये देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा ये भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए, तब अध्यक्ष और अधिपति राज कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। परंतु वो विश्वासयोग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। वो धार्मिक व्यक्ति है, हम उसे कभी फंसा ना पाएंगे। उसे फंसाने के लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो उसे परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध लेकर चले, क्योंकि वो उसके विरुद्ध कभी नहीं जाएगा। दानियल अध्याय पांच पद छः और सात। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। राजा के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे चोट किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वो सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। ऐसी घोषणा करना किसी मूर्ख का ही काम हो सकता है। अगले 30 दिनों तक कोई भी मेरी अपेक्षा किसी से कुछ न मांगे। ये लोग राजा के अहंकार के साथ खिलवाड़ करते हुए उसकी झूठी प्रशंसा कर रहे थे। तुम बहुत महान हो, लोगों को जानना चाहिए कि तुम कितने महान हो, अतः इसे दिखाने के लिए ऐसा ऐलान करो कि सारे राज्य में कोई ना तो किसी देवता की आराधना करे या किसी भी चीज के लिए तुम्हारे अलावा किसी और से कहे, ताकि सब जान ले कि तुम कितने महान हो। दानियल अध्याय छे पद आठ। इसलिए अब हे राजा, ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर। वे उसके पास घोषणा पत्र भी ले आए कि वो उस पर हस्ताक्षर करे और सील लगाए। दानियल अध्याय छे पद आठ और नौ। जिससे ये बात मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार अदल बदल ना जा सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। अब ध्यान दीजिए कि जिस आज्ञा पत्र पर एक बार हस्ताक्षर हो गया, वो बदल नहीं सकता था। दारा राजा ही क्यों ना हो, इससे स्पष्ट होता है कि दारा राजा नबुकदनेस्सर जैसा प्रभावशाली राजा नहीं था। नबुकदनेस्सर की ये विशेषता थी कि वो आज्ञा देकर भी बदल सकता था। उसके हाथ में पूरा नियंत्रण था, वो कभी भी कुछ भी कर सकता था। किसी को भी मार सकता था, किसी को भी बचा सकता था। मेरा कहने का अर्थ यह है कि उसके हाथ में संपूर्ण प्रभुता थी, परंतु यहां ये राजा दारा अपने ही आज्ञा के अधीन था। दानियल अध्याय 6:10। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, दानियल ये जानता था कि राजा ने हस्ताक्षर कर दिया है। दानियल अध्याय 6:10-11। तब वो अपने घर में गया, जिसकी उपरौटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। दूसरे इतिहास की पुस्तक में जब सुलेमान राजा उस मंदिर को जिसे उसने बनवाया था परमेश्वर को अर्पण करते समय एक बहुत सुंदर प्रार्थना करता है। उस प्रार्थना में सुलेमान कहता है, ओह परमेश्वर, यदि वे तेरे विरुद्ध पाप करे और दूसरे देवता की आराधना करना और सेवा करना शुरू कर दे और अपने शत्रुओं के द्वारा बंदी बना लिए जाए, तब यदि वे इस स्थान की ओर फिर कर प्रार्थना करें, तब उनकी प्रार्थना को अपने स्वर्गीय पवित्र स्थान से सुनना और प्रार्थनाओं का उत्तर देना और उन्हें बंधुआई में से छुड़ा लेना। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने सुलेमान की इस प्रार्थना का जवाब इस प्रकार दिया था। दूसरा इतिहास अध्याय 7:14। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। इसी कारण दानियल भी बंधुओं के साथ ले लिया गया था, परंतु जैसी सुलेमान ने प्रार्थना की थी, परमेश्वर यदि वे इस स्थान की तरफ फिर कर प्रार्थना करें। दानियल भी मंदिर के पवित्र स्थान की ओर फिर कर प्रार्थना कर रहा था। इसलिए यहूदी आज भी पश्चिमी दीवार के पास जाते हैं और पश्चिमी दीवार की ओर मुंह करके प्रार्थना करते हैं, क्योंकि पश्चिमी दीवार के दूसरी तरफ सुलेमान के मंदिर का पवित्र स्थान होता था। सुलेमान ने कहा था, ये स्थान जिसे मैंने तेरे लिए बनाया है, तू तो जानता है कि स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर ये भवन तो बहुत छोटा है जो मैंने बनाया है। परंतु हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि ये वो स्थान हो जहां लोग तुझसे मिल सके, और अगर वे इस स्थान की ओर फिरे और प्रार्थना करे और तुझे पुकारे, तब उनकी प्रार्थना को सुनना। अतः दानियल यरूशलेम की तरफ फिरकर प्रार्थना कर रहा था। बाबुल की बंधुआई के संपूर्ण 70 वर्षों में उसने दिन में 3 बार इस स्थान की ओर फिरकर इसराइल वंशियों और इसराइल राष्ट्र के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने की एक रीति बना ली थी। दानियल कितने सुंदर व्यक्तित्व का मालिक रहा होगा। ऊपर जाकर दानियल से हाथ मिलाना और परिचय करना कैसा सौभाग्यपूर्ण होगा। स्वर्ग में जाकर जिन लोगों से मैं मिलना चाहता हूं, उन लोगों की सूची में दानियल का नाम ऊपर के स्थान में है। मैं दानियल की सचमुच प्रशंसा करता हूं। कितनी हिम्मत थी उसमें। वो जानता था कि राजा ने आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, परंतु अपनी रीति के अनुसार बिना किसी की परवाह किए, बिना किसी से कुछ छिपाए, वो घर की खिड़की को खुली रखकर परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। दानियल अध्याय 6:12-16 तक। सो वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य व देवता से विनती करेगा वो सिंहों की माद में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हां, मादियों और फारसियों के अटल व्यवस्था के अनुसार ये बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंधुओं में से जो दानियल है उसने, हे राजा, ना तो तेरी और कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर। वो दिन में 3 बार विनती किया करता है। ये बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसके बचाने का यत्न करता रहा। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, ये जान रख कि मादियों और फारसियों में ये व्यवस्था है कि जो निषेध आज्ञा या आज्ञा राजा ठहराए वो नहीं बदल सकती। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों के माद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। कल्पना कीजिए कि मादियों का राजा दारा दानियल को संतावना दे रहा है, परेशान मत हो, चिंता मत कर, दानियल तू जानता है मुझे ये करना पड़ेगा। मैं मूर्ख था परंतु जिस परमेश्वर की तू उपासना करता है वो तुझे बचाएगा। वो उन 3 इब्री युवकों की तरह बोल रहा था, वो परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं हमें इस धधकती हुई भट्टी से बचाने में सामर्थी है, वो हमें तुम्हारे हाथों से बचाएगा, और अगर वो ना भी बचाएं तो भी हम तेरी उपासना नहीं करेंगे। दानियल अध्याय 6:17 से लेकर 20 तक। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मोहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ भी बदलने ना पाए। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन के पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की तरफ फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा, मुझे ये पसंद है, आधी आशा के साथ आश्चर्य करना। दानियल अध्याय 6:20 में आगे लिखा है, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? राजा को विश्वास अवश्य रहा होगा, नहीं तो वो वहां जाकर दानियल को नहीं पुकारता और ना ही ऐसा सवाल पूछता। पिछली रात को उसने दानियल से कहा था, दानियल, चिंता मत कर, तेरा परमेश्वर तुझे छुड़ाने का सामर्थ्य रखता है। परंतु उसके मन में संदेह था, इसलिए वो पूछता है, क्या तेरा परमेश्वर तुझे बचा सका? दानियल अध्याय 6:21 से लेकर 26 तक। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, मेरा परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। सो दानियल को गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया, क्योंकि वो अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। और राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी, वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाएं, और वे गड्ढे के पेंदी तक भी ना पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास ये लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो, मैं ये आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थर थराते रहें, क्योंकि जीवता और युगानयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है, उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। अब यहां ध्यान दीजिए कि एक मूर्ति पूजक राजा क्या घोषणा कर रहा है। दानियल अध्याय 6 पद 27 और 28, जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। और दानियल दारा और कुसरू फारसी दोनों के राज्य में सुख चैन से रहा। दारा मादियों का और कुसरू फारसियों का राजा था।